पिछले 2 हफ्तों से हम रैप्चर के विषय में, रैप्चर का मतलब आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर हमें ले जाने के लिए प्रकट होना, और फिर हम में से जो लोग उस समय मरे हुए होंगे, जीवित, जो जीवित नहीं होंगे वो उनका पुनरुत्थान होगा, और जो उसमें जीवित है वो उनको नया शरीर मिलेगा, और फिर सारे के सारे यहाँ से उठा लिए जाएंगे, बादलों पर प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होगी, और उसके बाद सदा हम परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ रहेंगे। इस सब्जेक्ट को लेके हम अध्ययन कर रहे हैं, और पिछले हफ्तों में या पिछले दोनों सेशंस में हमने तसलोनिकियों की पहली पत्री में से अध्ययन किया था, चौथा अध्याय में से, और उसके बाद हमने कुरिन्थियों की पत्री में भी हम गए थे थोड़ी देर के लिए। कुरिन्थियों की पहली कुरिन्थियों का 15वां अध्याय में से भी हमने चर्चा की कि वहां पर पवित्र आत्मा पुनरुत्थान के विषय में, यानी मुर्दों का जी उठने के विषय में काफी विस्तार रूप से शिक्षा दी है, विशेष करके उस 15वां अध्याय में उसके बारे में हमने चर्चा की। और हमने ये भी देखा कि पहली शताब्दी में और आज के समय में भी ये सच है कि झूठे शिक्षक होते थे जो पवित्र शास्त्र की यानी परमेश्वर की सच्चाई को गलत रीति से कलीसिया में पेश करते थे, और कलीसिया में कन्फ्यूशन लेके आना और लोगों के विश्वास को खराब करना उनका काम था। और मैंने ये भी कहा था कि ये लोग मसीही लोग ही हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में चलने के बजाय वो शैतान की अगुवाई में चलते रहे और गलत शिक्षा देते रहे, और गलत शिक्षाओं के कारण कलीसिया में कन्फ्यूशन आ सकती है और लोगों के विश्वास को खराब कर सकती है ये गलत शिक्षाएं। लेकिन सही शिक्षा जो है, जब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सही शिक्षा लेके आता है तो वो कन्फ्यूशन दूर हो जाती है और गलत फहमियां हट जाती है और लोगों का विश्वास फिर से ठीक हो जाता है और फिर स्थिर भी हो जाता है। इस कुरिन्थियों की पत्री में 15वां अध्याय में पुनरुत्थान को लेके विस्तार रूप से शिक्षा इसलिए दी गई है क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि कुछ झूठे शिक्षक उस पहले शताब्दी में कलीसियाओं में घुस गए थे और वहां पे गलत शिक्षा देना शुरू किया था। लेकिन इस पत्री के द्वारा पौलुस उन गलत शिक्षाओं को खंडन करते हुए सही बात, यानी हम ये कह सकते हैं कि पुनरुत्थान को लेके जो सच्चाई है वो स्पष्ट रूप से इस पत्री के द्वारा वो कलीसिया को बताता है, यानी हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कलीसिया को बता रहा है, क्योंकि पुनरुत्थान जो है हमारे विश्वास का एक मूल विषय है, हमारे विश्वास की जो बुनियादी शिक्षाओं में से एक है, और इसलिए इसके बारे में सही जानकारी विश्वासियों के पास होना जरूरी है। और इस बात को बताते हुए वो एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त जानकारी भी देता है, कुछ डिटेल्स वो देता है जो पहले पौलुस उनके बीच में रह के यानी कुरिन्थुस की कलीसिया में रह के नहीं सिखाया हो, वो भी इस पत्री में है। एक एडिशनल जानकारी या इनसाइट आपको मैं बताना चाहूंगा, तितुस की पत्री में हम चलते हैं 2 अध्याय में, वहां पर अंग्रेजी में टाइटस तिमोथियस की पत्री के बाद, यहां पर 2 अध्याय में हम चलते हैं और 14वां पद से लेके 14वां पद तक जो पैसेज है उसमें उसको पढ़ने से हमें ये पता चलेगा कि रैप्चर जो है यानी प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर प्रकट होना और फिर हमारे यहां से उठा लिए जाना, यस, जिसको हम रैप्चर कहते हैं, ये विश्वासियों के लिए अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में, यानी इस हमारे लिए इस 21st सेंचुरी में संयम और धार्मिकता के साथ और भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए एक प्रोत्साहन है, या प्रेरणा है या फिर अंग्रेजी में इंसेंटिव है, यानी परमेश्वर और ये इस पैसेज में का अध्ययन करते हुए हमें दिखाई देता है कि रैप्चर जो है और रैप्चर को लेके जो आशा है विश्वासियों में, वो हमेशा उनको प्रेरणा देती है कि हम अभक्ति को छोड़ दे, संसारिक अभिलाषाओं से हम दूर रहे। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, या और सिर्फ दूर रहना ही नहीं, उनसे फेर कर या उनसे मुड़कर हम संयम के साथ और धार्मिकता के साथ और भक्ति के साथ अपना जीवन बिताए परमेश्वर के लिए। तो एक इंसाइट है, और इस पैसेज को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कभी। कुरिन्थियों की पत्री में हम चलते हैं, संडेज की तरह हम फास्ट नहीं जा रहे हैं, हम थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ बातें दिखाना चाहता हूं और समझाना भी चाहता हूं। एक इंसाइट और देता हूं आपको, इन बातों को हम अपने जीवन में लागू कैसे, या इन जानकारियों को कैसे हम अपने जीवन में लागू करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि पहली शताब्दी में झूठे शिक्षक होते थे, पहली शताब्दी में, यानी कलीसिया जब सिर्फ 15 या 20 साल की थी, उससे ज्यादा समय नहीं हुआ, क्योंकि एडी 51 में ये पत्री कुरिन्थियों की नहीं तसलोनिकों की पत्री लिखी गई है, और एडी 33 के आसपास यीशु मसीह को सलीब दी गई है अप्रोक्सीमेटली। तो हम कह सकते हैं जब कलीसिया का शुरू कलीसिया की स्थापना हुई और 17 साल भी नहीं बीते, उससे पहले ही झूठे शिक्षक खड़े हुए कलीसिया के अंदर और गलत बातें सिखाने लगे लोगों को। तो और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि आज भी झूठे शिक्षकों की कमी नहीं है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में। मैं स्थानीय कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह की देख जो इस पूरे ब्रह्मांड में है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि उस कलीसिया के अंदर झूठे शिक्षक पाए जाते हैं। और हमने शुरुआत में कई हफ्तों पहले एक बार मैंने आपको बताया था कि जो कुछ हम विश्वास करते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, इसलिए हमें स्वयं परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना चाहिए। सिर्फ इतना काफी नहीं है कि हम टीचिंग सुने और उन सब बातों को विश्वास करें जो टीचर्स बता रहे हैं, हमें स्वयं पवित्र शास्त्र में देखना भी चाहिए कि जो बातें हमें सुनने को मिलती हैं वो यूं ही है कि नहीं। जैसे प्रेरितों के कामों में से हमने देखा था 17वां अध्याय में बिरिया नाम के शहर में जो विश्वासी थे उनके बारे में, वो आपको अच्छी तरह मालूम है, इसलिए मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। कुरिन्थियों की पहली पत्री का 15वां अध्याय में चलते हैं, वहां पर 51वां पद को देखते हैं। यहां पर पौलुस कहता है कि या पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। तो एक बात जो पहले इनको नहीं मालूम थी, और हमें इस वेद शब्द को समझने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में जब आप वेद शब्द पढ़ते हैं या गुप्त बात या सीक्रेट या मिस्ट्री अंग्रेजी में पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना ये वेद या मिस्ट्री वो नहीं है जो हम हमारे स्कूल डेज में नॉवेल्स पढ़ते थे, जैसे नैन्सी ड्रू और थ्री इन्वेस्टिगेटर्स, या फिर हिंदी में करमचंद डिटेक्टिव वगैरह जैसे बुक्स या टीवी सीरियल देखते थे जहां पे वो मिस्ट्री सॉल्व करते थे। ऐसा नहीं है, परमेश्वर के वचन में पवित्र शास्त्र में मिस्ट्री या वेद की बातों का मतलब है कि जो बात अभी वेद है वो परमेश्वर ने अभी तक किसी पर जाहिर नहीं किया। परमेश्वर ने अभी उस समय तक अपने तक रखा था, लेकिन उस समय जाहिर कर रहा है। इसका मतलब जो बातें अभी पौलुस इनको बताने जा रहा है वो इससे पहले परमेश्वर ने कभी किसी को नहीं बताया था। इसका मतलब ये पुराना नियम में कहीं भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो वेद शब्द को जब आप बाइबल में पढ़ते हैं इस बात को ध्यान में रखिएगा, और वो कौन सा वेद उनको बता रहा है कि सबसे पहले हम सब नहीं सोएंगे, यानी हम सब नहीं मरेंगे। सोना शब्द आपको पता है बाइबल में तसलोनिकियों की पत्री में भी हमने देखा था कि जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद मर जाते हैं उनको पवित्र शास्त्र मरना शब्द या मृत्यु शब्द उनके लिए इस्तेमाल नहीं करता। पवित्र शास्त्र कहता है कि वो प्रभु में सो रहे हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उनको उठना है, उनको जी उठना है एक दिन प्रभु के साथ जाने के लिए। इसलिए उनके लिए एक खूबसूरत शब्द इस्तेमाल किया गया है कि वो सो रहा है। तो पवित्र शास्त्र में पौलुस पवित्र आत्मा से होकर ये कहता है कि हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। यानी हम पवित्र शास्त्र में ये देखते हैं कि क्या कह रहा है। वो कहते हैं कि क्षण भर में, यानी फलक झपकते ही, अंतिम तुरही फूकते ही ये सब कुछ होगा। हमें ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि प्रभु के आगमन को लेके, रैप्चर को लेके पहले शताब्दी के विश्वासियों को सब कुछ मालूम था। शायद नहीं, ये बात कि हम सब नहीं मरेंगे, ये कुरिन्थुस में पहली बार पौलुस के द्वारा पता चल रहा है। कुरिन्थुस में मतलब कुरिन्थुस में जो विश्वासी है, इन द चर्च ऑफ कुरिन्थ। और ये बात तेसलोनिकियों में रहने वाले विश्वासियों को भी मालूम चली, क्योंकि कुरिन्थुस में स्थित कलीसिया के नाम पे जो पत्री है वो बाकी कलीसियाओं में भी दी जाती थी, भेजी जाती थी। इसलिए उस समय के सारे विश्वासियों को ये बात पता चली कि सब नहीं मरेंगे, यीशु मसीह के आने के समय कुछ लोग जीवित होंगे तो वो बदल जाएंगे, लेकिन जो सो चुके हैं या जो मर चुके हैं वो जी उठेंगे, उनको भी नया शरीर मिलेगा। यानी सबको नया शरीर मिलेंगे, फिर सब यहां से उठा लिए जाएंगे। और जो कुछ पौलुस ने तसलोनिकियों को लिखा, हमने पहले भी देखा कि वो सारी बातें कुरिन्थुस के विश्वासियों को मालूम थी, क्योंकि कुरिन्थुस में से ही पौलुस ने वो पत्री लिखी थी। तो जाहिर है कि उस पत्री में जो कुछ भी लिखा था कुरिन्थुस शहर के कलीसिया के विश्वासियों को भी पौलुस ने बताया, ये हम विश्वास कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है। और एडी 50 में तसलोनिके शहर में पौलुस और सिलास पहुंचे थे पवित्र सुसमाचार लेके। उसके बाद वो लोग कुरिन्थुस में आए थे, और पवित्र शास्त्र में प्रेरितों के कामों का अध्ययन करने से आपको पता चलेगा कि ये दोनों वहां पर 18 महीने रहे थे कुरिन्थुस में, और कलीसिया को सिखाते रहे। और 52 AD में वो इफिसुस चले गए, और वहां से AD 55 या 56, यानी 3 या 4 साल के बाद वो कुरिन्थुस की कलीसिया को पत्री लिख रहे हैं, क्योंकि उनको पता चला है कि वहां पर कुछ झूठे शिक्षक आए हैं और लोगों को पुनरुत्थान को लेके गलत शिक्षाएं दी है। इसलिए पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पौलुस ये और स्पष्ट रूप से इन बातों को समझा रहा है, ताकि उनके बीच में जो कंफ्यूजन है वो हट जाए। और वो यही बात जो तसलोनिकियों को भी पौलुस ने पहले बताई है कि ये सब कुछ पल भर में होगा, यानी पलक झपकते ही ये सब कुछ होगा परमेश्वर। और यहां पर वही बात वो रिपीट करता है कि जैसे हमने तसलोनिकियों की पत्री में पढ़ा था कि परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, यहां पर भी वो उस बात को दोहराता है, लेकिन उसके बाद की बातें वो यहां पर रिपीट नहीं करता जो हमने तसलोनिकियों में देखा था, तसलोनिकियों की पत्री में, कि तुरही फूकी जाएगी, ललकार होगा और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और फिर मुर्दे जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं हम बदल जाएंगे, फिर हम सब यहां से उठा लिए जाएंगे। वो बात यहां पर वो रिपीट नहीं करता, क्योंकि वो बात इनको मालूम है। सिर्फ रिजरेक्शन को लेके कुछ कंफ्यूजन रही है उनके बीच में, वो दूर करने के लिए पूरा एक चैप्टर में जितनी बातें हैं वो सिर्फ रिजरेक्शन को लेके एडिशनल जानकारी वो यहां पर ये देता है कि हमारा नया शरीर होगा और वो अविनाशी शरीर होगा। हमारे पास अभी जो शरीर है वो विनाशी है, वो धीरे धीरे शरीर जो है बूढ़ा हो जाता है और फिर इसमें बीमारियां भी आसानी से आ जाती है और एक दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन जो नया शरीर मिलेगा वो इनकरप्टेबल होगा, अविनाशी शरीर होगा, वो हमेशा वैसे के वैसे रहेगा, उसमें कोई बीमारी नहीं आ सकती, वो कभी मर नहीं सकता वो शरीर। और यहां पर वो रैप्चर का दूसरा या रैप्चर से रिलेटेड और कोई बात नहीं बता रहा है, लेकिन ये मत बोलना कि रैप्चर जो है और रिसरेक्शन वो आपस में जुड़े हुए हैं। जब तक रिसरेक्शन या पुनरुत्थान नहीं होगा, रैप्चर पूरा नहीं होगा। और ये सब कुछ ध्यान रखना पलक झपकते ही होगा, यानी इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि यहां पर जबकि वो सिर्फ पुनरुत्थान को लेके ही बात कर रहा है, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ या इस बात को ध्यान में रखते हुए पवित्र आत्मा रैप्चर के विषय में नहीं बता रहा है, क्योंकि रैप्चर के विषय में उनको ऑलरेडी मालूम है। तिमोथी की पत्री में जाइए, सेकंड तिमोथी, तिमोथी उसकी पत्री दूसरी पत्री उसका दूसरा अध्याय में, सेकंड तिमोथी चैप्टर 2, तिमोथियुस की दूसरी पत्री का दूसरा अध्याय 17वां और 18वां पदों को हम देखते हैं। हम पहले 18वां पद को देखते हैं। इसमें लिखा है कि कुछ लोग जो कलीसियाओं में खड़े हुए हैं, इनको हम झूठे शिक्षक बोलते हैं, उन लोगों ने ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं। ये सिखाने वालों की बात कर रहे हैं, अभी सीखने वालों की या विश्वासियों की बात नहीं, सिखाने वालों की बात हो रही है कि वे सत्य से भटक गए हैं, परमेश्वर के वचन से वो हट चुके हैं, और वो ये सिखाते हैं कि पुनरुत्थान हो चुका है। और ऐसा शिक्षा देकर उन्होंने कलीसिया को नुकसान पहुंचाया, यानी कलीसिया के मतलब, कलीसिया का मतलब विश्वासियों को नुकसान पहुंचाया। किस तरह का नुकसान पहुंचाया कि विश्व कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर दिया उन्होंने, यानी विश्वासियों के विश्वास को उन्होंने खराब किया। कैसे खराब किया, मैं आपको आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, बट आप सोचिएगा पहले, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। अगर कलीसिया में आके कोई ये सिखाता है कि पुनरुत्थान हो चुका है, तो इसका मतलब क्या होगा, सोचिए। और पौलुस यहां पे दो जनों का नाम भी बता रहा है 17वें पद में, इसलिए मैंने आपको 17वें पद का भी जिक्र किया था, हुमिनयुस और फिलेतुस, दो जनों का नाम जो इस तरह की शिक्षा दे रहे थे। आप सोचिए, अगर कोई आके शिक्षा देता है और आप उस शिक्षा को सुनते हैं कि पुनरुत्थान हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ ना कि यीशु मसीह बादलों में प्रकट हुआ और विश्वासी लोग चले गए और हम रह गए, इसका मतलब यही हुआ ना। आप सोचिए, अगर इस तरह की शिक्षा आप तक पहुंचती है और जब आप इस बारे में सोचना शुरू करते, तो आपके अंदर एक डर नहीं आएगा कि हम कैसे रह गए, हमारे साथ क्या हुआ। फिर धीरे धीरे आप विश्वास से मुड़ जाएंगे ना, हट जाएंगे ना, क्योंकि हमारे विश्वास करने से, यीशु मसीह को ग्रहण करने से और अभी तक आशा रखने से क्या मिला हमें, हमने दुख सगा, हमने हमारे साथ सताव होते रहे, हम सहते रहे इस उम्मीद के साथ कि हम चले जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह आके चले भी गए और हमें पता भी नहीं चला। तो इस तरह लोगों के विश्वास को खराब किया है उन झूठे शिक्षकों ने। पत्रस की दूसरी पत्री में भी इस बारे में लिखा है, मैं आपको सिर्फ रेफरेंस देता हूं, आप बाद में देख लेना। पत्रस की दूसरी पत्री का तीसरा अध्याय का तीसरा पद में, वहां पर पवित्र आत्मा एक चेतावनी देता है कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, और फिर वो क्या करेंगे, और वो इस तरह के सवाल पूछेंगे विश्वासियों से कि पवित्र वो परमेश्वर के परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर वो सवाल उठाएंगे कि उसका आने के विषय में जो प्रतिज्ञा है उसका क्या हुआ, अभी तक वो क्यों नहीं आए, इस तरह की बातें वो करेंगे। और जब इस तरह की बातें की जाएगी चर्च में विश्वासियों के बीच में, तो विश्वासी लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र आत्मा कहता है कि इस तरह हंसी ठट्टा करने वाले लोग जो है सवाल पूछेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसे जैसा सृष्टि के आरंभ में था। तो इस तरह की बातें वो करेंगे और वो इनके लिए हमने तिमोथियस की पत्री में देखा था, पढ़ा था कि पवित्र आत्मा कहता है कि वो सत्य से भटक गए हैं, तो सत्य से वो फिर गए, यानी वो सही मार्ग में से वो हट गए हैं और गलत मार्ग में वो लोग चल रहे हैं, इसलिए गलत बातें सिखा रहे हैं। तो अभी तक हमने रैप्चर को लेके तसलोनिकियों की पत्री और कुरिन्थियों की पत्री में से हमने पुनरुत्थान के विषय में सीखा। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कहना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो उस बड़ा क्लेश के बारे में सोचते हैं, और या आपको कभी इस तरह की शिक्षा मिली हो कि रैप्चर से पहले एक बड़ा क्लेश में से हमें निकलना होगा जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य में बताया गया है, तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि सलोनी के शहर में जो कलीसिया थी या वहां पे जो विश्वासी थे, उन्होंने उनके पास रैप्चर को लेके संपूर्ण जानकारी थी, यानी रैप्चर को लेके जो कुछ विश्वासियों को मालूम होना चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर ने उस पत्र के द्वारा कलीसिया को बताया है। इसलिए पहली शताब्दी की सारी कलीसियाओं के पास, यानी कलीसियाओं से मेरा मतलब स्थानीय कलीसियाओं के पास और विशेष करके इस तसलोनी के शहर की कलीसिया के पास पूर्ण जानकारी थी। और यहां पर हम उस बड़ा क्लेश को लेके या उस ट्रिब्यूलेशन को लेके कोई चर्चा नहीं देखते, उस ट्रिब्यूलेशन के बारे में, उस क्लेश के बारे में कोई चर्चा इस पत्री में नहीं है। और इसलिए मैं कहूंगा कि यीशु मसीह के अनुयायी होने के कारण, यानी यीशु मसीह के पीछे चलने वाले होने के कारण, हमें पवित्र शास्त्र में दी गई स्पष्ट रीति से दी गई शिक्षाओं के अनुसार चलना चाहिए। और हमें रैप्चर के विषय में जो कुछ स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने बताया है उन बातों को पकड़ के रखना चाहिए, और हमें क्लेश के बारे में सोचना और चिंता करना नहीं चाहिए। और एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए कि हमें रैप्चर से पहले, यानी यीशु मसीह के बादलों में प्रकट होने से पहले क्लेश में से निकलना पड़ेगा जो 7 साल तक रहेगा, तो क्या हम उसमें कुछ परिवर्तन ला सकते हैं? क्या ये हमारे वश में है कि हम उस 7 साल के क्लेश को रैप्चर के बाद के लिए कर दें या रख दें? ऐसा हम नहीं कर सकते, ये वो हमारे हाथ में नहीं है, तो उसको लेके हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं और प्रभु का दिन को लेके चर्चा कर सकते हैं, और इसके लिए हमें वापस तसलोनिकियों की पत्री में जाना होगा और 5वां अध्याय में हम चलते हैं। अभी तक हमने सिर्फ रैप्चर के बारे में अध्ययन किया है, तसलोनिकियों की पहली पत्री 4:13 से लेके 18 तक का जो पैसेज है उसमें से हमने काफी समय से हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और अभी रैप्चर को लेके मैं विश्वास करता हूं कि आपके पास पूर्ण रूप से जानकारी आ गई है और आपके पास कोई सवाल नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप जब पूछेंगे मैं आपको जवाब दूंगा। तो रैप्चर के बारे में संक्षिप्त में यह है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होंगे और जो प्रभु में विश्वास करके सो गए हैं वो जी उठेंगे और हम जो उस समय जीवित, अगर हम जीवित हैं या जो भी विश्वासी जीवित होंगे वो एकदम बदल जाएंगे और फिर सारे के सारे मिलके पलक झपकते ही यहाँ से उठा लिए जाएंगे, एकदम प्रभु ऊपर को खींच लेंगे और प्रभु से मिलेंगे, उसके बाद प्रभु के साथ हमेशा तक रहेंगे। ये है रैप्चर। रैप्चर जो है एक लैटिन शब्द है जो अंग्रेजी में भी इस्तेमाल होता है, वो इस पूरा पूरी घटना को लिए, इस घटना को बताने के लिए एक शब्द है। और ये बहुत ही रोमांचक घटना होगी, बहुत इसके बारे में जब सोचते तो बहुत आनंद आता है, क्योंकि ये सब कुछ अचानक होगा और हमारा जीवन यहाँ पर समाप्त होगा या हमारा समय जो है इस पृथ्वी पर समाप्त होगा और फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना जो है वो शुरू हो जाएगा। और एक सेकंड में हम लोग सब यहाँ से, अगर उस समय हम जीवित हैं तो एक सेकंड के अंदर हम लोग यहाँ से गायब हो जाएंगे और जो विश्वासी नहीं है वो देखेंगे, उनको पता चलेगा कि जो मसीह लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, वो एकदम गायब हो गए इस दुनिया से। और इस सत्य को या इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए और इस शिक्षा से तसल्ली और शांति पाने के लिए पवित्र आत्मा ने कहा था। अब तसलोनिकियों की पहली पत्री का 5वां अध्याय में चलते हैं। पर हे भाइयों, और यहां पर ये पर शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि 4वां अध्याय में वो रैप्चर के विषय में बता रहा था, लेकिन अब विषय जो है, सब्जेक्ट जो है बदल रहा है, अब कुछ और बात करने जा रहा है, इसलिए वो कहता है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। दूसरा पद, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ बाय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। ध्यान रखिए, ये जो इस पद में जो पर लगा हुआ ना, पर शब्द, इसका एक खास मकसद है। और आप जानते हैं कि विषय चेंज हो रहा है, बदल रहा है। 4वां अध्याय में रैप्चर के विषय में बात हो रही थी, अब प्रभु का दिन के विषय में बात हो रहा है। और यहां पर ध्यान से देखिए, पौलुस कहता है कि मुझे प्रभु का दिन को लेके तुम लोगों को कुछ भी लिखने की या बताने की जरूरत नहीं है। यानी पवित्र आत्मा को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि प्रभु का दिन को लेके इस कलीसिया को अच्छी तरह से मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि उनको सिखाया गया था। उनको सिर्फ रैप्चर के विषय में ही नहीं, पुनरुत्थान और रैप्चर के विषय में ही नहीं, प्रभु का दिन को लेके भी पूर्ण जानकारी दी गई थी, उनको मालूम है। इसलिए वो कहता है कि मुझे इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो इस 5वां अध्याय का जो पहला पद है, इस बात कि फिर से हमें सबूत देता है कि पहली शताब्दी में कलीसिया को रैप्चर को लेके और प्रभु का दिन को लेके पूर्ण जानकारी थी। यानी जितनी बातें उनको मालूम हो जानी चाहिए थी, वो सारी बातें प्रभु के दासों ने उनको सिखाया, उनको अच्छी तरह से मालूम था। अब हम ध्यान से पढ़ेंगे और इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे कि अब जो चर्चा चल रही है वो रैप्चर के विषय में नहीं, प्रभु का दिन को लेके है। इसके बीच में रैप्चर आ जाएगा, लेकिन वहां पर हम रुक जाएंगे और हम उस बात को ध्यान से देखेंगे। अब ये रैप्चर की बात हो रही है और ये अब प्रभु का दिन को लेके बात हो रही है, इसलिए हमें थोड़ा सा स्लो जाना होगा और ध्यान से देखना होगा। दूसरा पद में लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। और मैंने पिछली बार आपको बताया था कि पवित्र शास्त्र में प्रभु का दिन जब इस्तेमाल होता है वो एक दिन यानी 24 घंटे का समय काल को नहीं दर्शा रहा है, वो एक लंबा समय काल को दर्शा रहा है जिसमें मुझे नहीं मालूम कितने दिन लगेंगे, अभी मुझे ठीक से नहीं पता, हो सकता है बाद में पता चल जाए तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसमें कई दिन या हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन उस समय काल के लिए पवित्र शास्त्र इस तरह से कहता है कि प्रभु का दिन, और इस प्रभु का दिन को दिन जो है एक्चुअली प्रभु का या न्याय का दिन है। और अगेन फिर से मैं कहूंगा वो न्याय का दिन जो है सिर्फ एक दिन नहीं, कई दिनों तक न्याय होता रहेगा या न्याय से जुड़ी हुई बातें या घटनाएं घटती रहेंगी, लेकिन पवित्र शास्त्र उसको न्याय का दिन सिंगुलर में एक वचन में कहता है। और पुराना नियम में ये 19 बार इस्तेमाल हुए हैं ये फ्रेज जो है प्रभु का दिन या अंग्रेजी में द डे ऑफ द लॉर्ड 19 बार इस्तेमाल हुए हैं, और नया नियम में ये 4 बार इस्तेमाल हुए हैं। पुराने नियम में जब भविष्यवक्ताओं ने इस वाक्यांश को यानी इस फ्रेज को इस्तेमाल किया तो उन्होंने या तो तुरंत होने वाला न्याय को लेके बात की है या जो कि उनके लिए तुरंत होने वाला न्याय हमारे लिए भूतकाल के न्याय है जो हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, या फिर उन्होंने भविष्य में यानी दुनिया के अंत में होने वाले न्याय को लेके बात की है। तो पवित्र शास्त्र में पुराने नियम में जब आप प्रभु का दिन देख पढ़ते हैं तो उसमें या तो वो उस समय का न्याय को लेके होगा या फिर भविष्य में आने वाला न्याय को लेके होगा। इस 5वां अध्याय में पौलुस प्रभु का दिन को लेके यानी न्याय के दिन को लेके बात कर रहा है और विश्वासियों से ये कह रहा है कि उनको प्रभु का दिन को लेके या न्याय का दिन को लेके विचलित होने की जरूरत नहीं है या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दिन जरूर आएगा और ऐसा समय में ये शुरू होगा जब कोई उसके लिए उम्मीद नहीं ना कर रहा हो। लेकिन पौलुस इनको समझा रहा है कि तुम्हें प्रभु का दिन को लेके मालूम है और रैप्चर को लेके भी मालूम है, इसलिए रैप्चर को सामने ही देखते हुए या रैप्चर पर अपना ध्यान रखते हुए इस समय इस युग में उनके लिए पहली शताब्दी और हमारे लिए 21वीं शताब्दी हम भक्ति के साथ और धार्मिकता के साथ अपना जीवन बिताए। और आपको याद होगा पिछली बार मैंने आपको बताया था कि पहली शताब्दी में या शुरुआत की शताब्दियों में विश्वासी लोग उनके जीवन काल में ही यीशु मसीह के आने की उम्मीद में थे, और इसीलिए जब कुछ लोग प्रभु में सो गए तो उनके मन में सवाल आया था कि इनका क्या होगा जो प्रभु में सो गए हैं, और क्योंकि उनको उसको उस बात को लेके स्पष्ट जानकारी नहीं थी वो शोक मना रहे थे कि शायद हम तो चले जाएंगे क्योंकि प्रभु जब आएंगे तो हम होंगे यहाँ पे, लेकिन जो मर गए हैं वो शायद रह जाएंगे। तो इसलिए 4वां अध्याय में तसलोनिकियों की पत्री के 4वां अध्याय में सारी जानकारी फिर से दी गई है विस्तार रूप से, ताकि लोगों के मन में दुख ना हो, लोग शोक ना मनाए, लोग आशा के साथ रहे। अब मैं चाहूंगा कि दूसरा तीसरा पद को आप ध्यान से एक बार पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि, और मैं कुछ शब्दों पर जोर दूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसमें जोर क्यों दिया है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। आपने इन सर्वनामों पर ध्यान दिया, इन प्रोनाउंस पर। सबसे पहले लिखा है कि जब लोग कहते होंगे, उसके बाद लिखा है तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, उसके बाद लिखा है कि और वे किसी रीति से नहीं बचेंगे। यहां पर पौलुस ये नहीं कहता है कि हम, या पौलुस ये नहीं कहता है कि तुम, या फिर तुम में से कुछ लोग। और ध्यान से सुनिए और देखिए, ये जो सर्वनाम है, वे या लोग या उन पर, और फिर इसके बाद तुम यानी विश्वासी, इस बात को अच्छी तरह से हमें बता रहे हैं कि हम में और उनमें फर्क है। यानी जब प्रभु का दिन शुरू होगा इस संसार में, कलीसिया यहां पर नहीं होगी। कहने का मतलब, विश्वासी लोग, यीशु मसीह का एक भी चेला उस समय पृथ्वी पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रैप्चर हो चुका होगा, होगा नहीं, रैप्चर हो चुका है, और यहां से विश्वासी लोग चले गए, उसके बाद ही प्रभु का दिन शुरू होगा। अब ये बात जानकर आपके अंदर खुशी आई होगी, बहुत तसल्ली मिली होगी। और एक और बात ध्यान देने वाली यह है कि परमेश्वर हम में और उनमें फर्क रखता है। यानी हम जो प्रभु यीशु मसीह की चेले हैं, और वे जो प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं है, हम दोनों में फर्क है, अंतर है। और यहां पे आप इंग्लिश में यू और हिंदी में तुम शब्द जो देखते हैं, वो विश्वासियों के लिए है। फिर आगे वो उसका कारण बताता है, जैसे चौथा पद से शुरू करता है, वो कहता है कि पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। दूसरा पद में पौलुस ने क्या कहा था, या पवित्र आत्मा ने क्या बताया था कि प्रभु का दिन कैसे शुरू होगा? जैसे रात को चोर आता है, रात को जब चोर आता है तो उसके आने के बाद, चोरी होने के बाद पता लगता है, उससे पहले कोई संकेत नहीं मिलता कि वो आने वाला है। इसी तरह उनके लिए जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भी डरने की जरूरत नहीं, लोग जब कहते होंगे, विश्वासियों के बारे में बात नहीं, लोगों के बारे में, जब वो कहते होंगे प्रभु का दिन जो है चोर के समान आएगा। लेकिन चौथा पद में पौलुस क्या कहता है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वे दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। तुम अंधकार में नहीं हो। क्यों नहीं हो तुम अंधकार में, या हम अंधकार में क्यों नहीं है? क्योंकि हम ज्योति के संतान है। अंधकार से हमारा कोई संबंध अब नहीं रहा, एक कारण। दूसरा कारण क्या है, मैं पहले बता चुका हूं कि हम यहां में होंगे ही नहीं, इसलिए जब वो दिन आएगा हमारे लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यहां पर नहीं होंगे। अब इस दिन को लेके भी झूठे शिक्षकों ने गलत शिक्षा दी थी, इसलिए यहां पर वो सफाई दे रहा है या स्पष्टीकरण दे रहा है कि हम लोग यहां पर नहीं होंगे, और वो दिन हम पर इस तरह से नहीं आएगा। नंबर वन, हम यहां पर होंगे नहीं, ये उनके लिए है। पवित्र शास्त्र कुलुसियों की पत्री में पहला अध्याय का 13वां पद में बहुत ही स्पष्ट रीति से, साफ रीति से कहता है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाया, और फिर सिर्फ छुड़ाया ही नहीं, हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर ज्योति में खड़ा किया है। यानी अमर परमेश्वर की ज्योति चमकती रहती है और हमें उस ज्योति में चलना भी चाहिए। और क्योंकि हम उस अंधकार के राज्य में नहीं है, परंतु हम ज्योति के राज्य में है, जो कुछ अंधकार में होगा, यानी परमेश्वर का क्रोध जब अंधकार में चलने वाला उम्र बढ़ेगा, उसका असर हम पर नहीं आएगा, हम यहां पर नहीं होंगे। और यूहन्ना का सुसमाचार में 8वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कम से कम 2 बार ये बात कही है। एक बार प्रभु ने कहा कि जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये आपको मिलेगा 8वां अध्याय का 12वां पद में। और फिर आप 46वां पद को भी देखिए, उसमें भी प्रभु ने कहा कि उनके पास, जो मेरे पीछे चलते हैं, उनके पास जीवन की ज्योति होगी, जीवन का प्रकाश होगा। तो अभी मेरे ख्याल हमें यहां पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि मैंने काफी काफी सारी बातें मैंने आपको बताई है, और अभी हमने सिर्फ शुरू किया है प्रभु का दिन को लेके अध्ययन। और सबसे पहले हमने ये जाना कि ये उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, यानी जो प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं है, ये उनके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। उनके लिए अचानक ये दिन शुरू होगा जैसे रात को चोर आता है, और जब लोग कहते होंगे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, उस समय अचानक जैसे जैसे प्रसव पीड़ा होता है, शुरू होता है, वैसे ही एकदम अचानक आएगा। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें लिखा है कि 3रा पद में कि वे किसी रीति से ना बचेंगे, जो विश्वास नहीं करते वो किसी भी रीति से नहीं बचेंगे। और ये सुन के और ये जान के हमारे अंदर ये एक दृढ़ निश्चय आना चाहिए कि हम कोशिश करेंगे, जब तक हम इस संसार में हैं, दूसरों को बताने की, सुसमाचार बताने की, ताकि वो लोग जो जिनके लिए अभी पवित्र शास्त्र कहता है कि वे नहीं बचेंगे, वो भी बच जाए। यानी जिनके लिए पवित्र शास्त्र अभी कहता ना कि जब लोग कहेंगे उन पर, या वे लोग, वे और हम में फर्क है, मैंने आपको बताया, लेकिन जिनके लिए अभी पवित्र शास्त्र कहता है वे, वो हम हो सकते हैं, या हम हमारे साथ मिल सकते हैं जब वो सुसमाचार को ग्रहण करेंगे। इसलिए हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, और फिर उनको सुसमाचार शेयर करने, उनके साथ शेयर करने की भी जरूरत है। तो हम कोशिश करेंगे, और प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ हम अपने इस काम को जारी रखेंगे।